Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आओ जब वापस यहां तक पहुंचे तो पानी खत्म हो बह गया पानी, अब बैलों को मिलेगा कि नहीं पानी? हमारी स्थिति भी बैलों की तरह है, आत्म तत्व कुएं की तरह है, आनंद आत्मानुभव वो जल की तरह है। इसी श्रुति ने कहा परांच खाणी वितरण स्वयं हो तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मा। तो हमारी इंद्रियां हमारे आंख से हमको बहुत दूर ले जाती हैं, हमें बाहर ले जाती हैं। पांचों ही इंद्रियां हमको बाहर ले जाती, हमें अंदर नहीं रहने देती, हम बहिर्मुख हो जाते हैं। ये बहिर्मुखता है, बाहर के पदार्थों का अनुभव, ये बहुत बड़ी बहिर्मुखता है। हमेशा रूप रस गंध स्पर्श इंद्रियां इन बाहर के पदार्थों में ले जाती हैं, और बाहर के ही पदार्थों में थोड़ा थोड़ा आनंद संस्पर्श उसी में आनंद का अनुभव करते हैं, अंतर्मुख नहीं हो पाते, बहिर्मुख होते हैं। सारी इंद्रियां हमको बाहर ही बाहर ले जाती है। अब उन बैलों को यदि पानी पिलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर यदि राहट चलते हुए बैलों को पानी पिलाना चाहो तो कभी संभव नहीं है। अब आपको यही करना पड़ेगा कि उसको खोलो, वापस मोड़ो और उस दिशा की ओर, कुएं की दिशा की ओर उनका मुख, और कुएं की दिशा में उस कुएं में कुएं के बाहर जो जमा पानी है वो पिलाओ। उसको मोड़ना पड़ेगा, उन बैलों को अंतर्मुख करना पड़ेगा। ऐसे हमें यदि आत्म सुख पाना है, आत्म तत्व को पाना है, बोले अंतर्मुख होना पड़ेगा। या हमारी आंख हमें बाहर ले जाती है, कान हमें बाहर के शब्दों में ले जाते हैं, हमारी ये रसनी इंद्रिय बाहर के स्वादादि पदार्थों में ले जाती है, भोजनादि आहारों में ले जाती है, ये त्वचेंद्रिय बाहर के स्पर्शादियों में ले जाती है, और हम उन्हीं में पागल बने रहते हैं। अब अपने को यदि आत्म तत्व को पाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें आंख से हटाना है, कान से हटा, इंद्रियों से अपने को हटाना है और अपने को बुद्धि में ले आना है। आंख से हटाना है, अपने मन को आंख से हटाना है, कान से हटाना है, त्वचेंद्री से हटाना है, रसनेन्द्री से हटाना है। यदि हमारा मन नाक में बना रहे ना तो सुगंध और दुर्गंध के अलावा मालूम क्या पड़ेगा? हमारी आंख में आत्मवृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा? हमें वही मालूम पड़ेगा, आंख में है तो रूपादि मालूम पड़ेंगे। इसलिए बहुत साधना का अर्थ है कि हम इंद्रियों से परे अपने मन को इंद्रियों से परे की स्थिति में ले जाए। एक चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर दृष्टांत है। चैतन्य महाप्रभु के मुख में आप मिश्री का टुकड़ा रखिए और दो तीन घंटे के बाद आप ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हैं। आपके मुख में मैं चॉकलेट रखूं गिरीश बाबू और मैं बोलूं प्रवचन के बाद हमको दे देना, लेकिन जेब में नहीं रखना है, मुख में रखना है। आपके पोते ने बोला कि ये दादाजी चॉकलेट मुख में रख लेता हूं आपके, और प्रवचन करके आना और हमको चॉकलेट देना है, आप देंगे? आप कितना भी कोशिश करो नहीं खाना है। आप अपने मन को बोला कि नहीं भैया नहीं चॉकलेट नहीं खाना, वो मुख में रखो। हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं विषय देखने के बाद, हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती, देहभाव जगाती हैं, वासना जगाती है, वासना हमारे इंद्रियों को सक्रिय बना देती है। और इंद्रिय जब सक्रिय हो जाती है तो आपके हाथ में थोड़ी रहती हो, वासना जब इंद्रियों को जगा देती है तो फिर इंद्रियां हमारे हाथ में नहीं रहती है। आपके मन में देखने की इच्छा पैदा हो गई, आंख खुल गई, अब उसके बाद आप सोचो कि मैं देखूं नहीं, आंख भी खुली हो दिखाई ना दे, ये कैसे संभव है? रसनेन्द्रिय रस को पैदा करती है, रस को पैदा करती है, द्रवित हो जाती है, और न चाहते हुए भी आपकी वो चॉकलेट खा जाती बेचारी, आप कितना भी रोको। इंद्रियों का स्वभाव है, वासना के बाद इंद्रियां जब जग जाती हैं तो वो दुनिया को दिखाती हैं और उस समय आत्मदर्शन संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने उच्च कोटि के साधक, आत्मनियंत्रक, आत्मसंयमी, उनके मुख में आप मिश्री का टुकड़ा रखो जैसा का वैसा पड़ा रहता, क्योंकि इंद्रिय में वो स्वाद ही नहीं और वो शुष्क हो जाती, वहां कोई लार नहीं टपकता था। आम आदमी की इंद्रियां लार टपकाती हैं, बाहर के पदार्थों को देखकर व्यग्र हो जाती वस्तु को पाने के लिए, लेकिन साधक आत्म नियंत्रण को प्राप्त करता है, इंद्रियों से अपने मन को परे ले जाता है। साधना का अर्थ तो यही है, साधना का अर्थ भी यही है, साधना का लक्ष्य भी यही है। धीरे धीरे हम अपने मन को इंद्रियों से परे की स्थिति में ले जाए, हम अपने मन से आंख से परे ले जाए, कान से परे, तभी तो हम शब्दातीत बनेंगे। स्पर्श में अटके पड़े हम तो स्पर्श के लिए हमारा मन लालायित होगा, इसलिए स्पर्श से परे। केवल बौद्धिक स्थिति, केवल बुद्धि में हम अखंडाकार वृत्ति, आप बोलते ना अखंडाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और ये अखंड वृत्ति जब उदित हो जाती है तो अखंडाकार इस वृत्ति में आत्म तत्व का बोध होता है। और इसीलिए यहां पर बालक नचिकेता को आचार्य यम कहते हैं, गुहा ही तम, गुहा माने बुद्धि, और ये आत्म तत्व जब भी आप जानेंगे तो केवल आप बुद्धि से जानेंगे, बुद्धि में ही वो तत्व है। गह्वरेष्टम पुराणम, अब एक एक शब्द वो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था दुर्गमता, दुर्लभता, ये दोनों चीजें बता रहे हैं। आत्म तत्व जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो दुर्गम है और वो दुर्लभ भी है, और यही इसका महत्व है। किसी चीज की दुर्लभता सहज प्राप्ति में नहीं होती है, कोई चीज आपको सहजता से मिल जाए तो उसको आप दुर्लभ कहोगे कि सुलभ कहोगे। जो चीज बहुत कष्ट से मिलती है ना वो दुर्लभ हो जाती है, उसका जो मूल्य है उसके दुर्गमता में, दुर्लभता में। कितनी भी मूल्यवान चीज हो और वो बहुत सुलभ हो तो उसका क्या मूल्य है। एक महात्मा ने एक मजेदार बात, वो सही है कि नहीं मालूम नहीं, कहीं लिखी हुई है कि ये भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत मजेदार बात सुनाई। उन्होंने कहा मालूम है, बोले लंका में रावण की लंका आपने सुना है, रावण के वहां सबसे कीमती धातु कौन सी थी? वो तो आपके लिए कीमती धातु सोना है। रावण की लंका में सबसे कीमती धातु कौन सी थी? हाँ उन्होंने कहा कि सबसे कीमती धातु लोहा थी। वो तो बहुत मजेदार बात बोल गए, चाहे भले ही मजाक हो लेकिन था बहुत मजेदार मजाक। उन्होंने कहा कि सबसे कीमती धातु लोहा, मिलती नहीं थी ना, वहां तो सोना ही सोना, सब सोने की लंका, मकान, दुकान, और ये सब सोना ही सोना है वहां। बोले लोहा बहुत दुर्लभ था, और बोले वो लोहे के अलंकार बहुत कीमती पहनती थी, बोले मंदोदरी के शरीर पर लोहे के अलंकार थे, कीमती थी ना वस्तु, दुर्लभ वस्तु। और जो सब लोग पहन रहे हैं, सबके गले में सोना ही सोना है, वहां सोना पहनने का मजा भी, आपको आनंद कब आता है? जब दूसरे के शरीर पर ना हो और आपके शरीर पर हो। आदमी जब भी कोई चीज पहनता है ना तो देखता दूसरे के पास है कि नहीं है, देखता दूसरे के पास है कि नहीं, माताएं देखती कि हम जैसा कपड़ा पहने वैसे दूसरे के शरीर पर है कि नहीं, और वैसा का वैसा यदि दूसरे के पास मिल जाए तो मजा नहीं आता। अरे वो तो ठीक है, हमने भी पहना वो भी पहनी, कोई मजा नहीं है। आपको मालूम पड़े ओहो हो, ये चीज तो बहुत दुर्लभ। ये कंपनी वाले भी बहुत बड़े चालाक होते हैं, वो केवल 100 घड़ी पैदा करते हैं। बता भी देंगे आपको, भैया केवल 100 घड़ी बना रहे हैं हम, केवल 100 घड़ी, और अब 100 ही बन रहे हैं, 101 भी नहीं। और आदमी पागल होकर घड़ी खरीदता है, खरीदते समय बोलते हैं बोले केवल 100 ही घड़ी बनी है। उसका जो मूल्य है उसकी दुर्लभता में है। आप देखेंगे आपकी घड़ी उससे ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन वो घड़ी आपको बहुत अच्छी मालूम पड़े। आप लोगों को बताएंगे अमुक कंपनी की केवल 100 बनी है। और यहां पर भी दुर्लभता दिखाना चाह रहे हैं आचार्य यम। आपके मन में उस तत्व के प्रति गहरी रुचि पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि गहरी रुचि के बिना आपकी साधना संभव नहीं, उसके प्रति जिज्ञासा संभव नहीं। इसलिए आचार्य यम बता रहे हैं कि वो तत्व, आत्म तत्व बहुत गहरा है। गह्वरेष्टम पुराणम, अरे बोले कोई नई चीज नहीं है ये, आत्म तत्व बहुत पुरानी है। आत्म तत्व कितना पुराना? जितना आप हैं। पिता आप ही तो आत्मा हैं, आप कितने पुराने हैं। वेदांत शास्त्र में 6 पदार्थों को अनादि बोला है, और उसमें जीव को भी अनादि बोला, अज्ञान को भी अनादि बोला। वेदांत की जो भी चीजें होती ना बहुत गहरे विचारों के बाद आती है। अज्ञान को अनादि बोला है, और अज्ञान अनादि है तो अज्ञान विषय जीवात्मा भी अनादि है। अज्ञान अनादि, ब्रह्म अनादि, ये तो बात समझ में आती है। आत्मा अनादि, ये भी बात समझ में आती है। अनादि माने जिसका आदि नहीं है, लेकिन उन्हें अज्ञान को भी अनादि बोला। अज्ञान को अनादि कहने का मतलब है आप अज्ञानी हैं। तो आप कब से अज्ञानी हैं? लोग ज्ञान का जन्म मानते हैं, लेकिन अज्ञान का जन्म और उस जन्म की प्रक्रिया को मनाने का कोई उपाय नहीं। आप जन्मदिन मनाते हैं, आप ज्ञान का जन्मदिन भी मनाते हैं, कई लोग मनाते हैं ना, अमुक दिन ज्ञान हुआ। भगवान बुद्ध भी मनाते, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ। बहुत से लोग मनाते ज्ञान का जन्म मनाते, हमको अमुक दिन ज्ञान हुआ। लेकिन आप अज्ञानी कब बने, इसका आप जन्मदिन मना सकते हैं क्या? भाई कभी से शुरुआत तो हुई होगी। अज्ञानी आप बने वो कहीं तो प्रारंभ होगा। आप आत्मा को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानने वाली प्रक्रिया कहीं से तो शुरू ही होगी। घटना बड़ी मजे, ये बहुत विचार का विषय है, इसलिए वेदांत ने इसको ब्रेक लगा दिया। अब बोले अनादि है, हम नहीं जानते। अनादि का अर्थ है हम नहीं जानते, भाई ये कहना है। ये टेक्निकल शब्द है वेदांत का। आप अज्ञानी तो हैं, अज्ञानी का अर्थ यही है कि हम आत्मा को नहीं जानते हैं। अज्ञानी का यही अर्थ है कि हम परमात्मा को नहीं जानते। लेकिन नहीं जानने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? उन्होंने ब्रेक लगाया, इस प्रश्न को ही ब्रेक कर दिया। बोले अनादि, और अनादि का अर्थ क्या है? हम नहीं जानते। ये प्रक्रिया कौन जानेगा? हम अज्ञानी कैसे बने, कब बने, इसको जानने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन बात तो सत्य है कि हम अज्ञानी बने, और इसका प्रारंभ भी है, कैसा है क्या है मालूम नहीं, अनादि। हम इसलिए पैदा होते ही हम अज्ञानी ही पैदा होते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में पैदा होती ही होती हैं, उसको सीखना नहीं पड़ता है। दूध पीना किसने सिखाया? आप जीव जंतुओं को देखना, ये मनुष्य का जो बालक होता है ना, बड़ा नासमझ है। जितना नासमझ मनुष्य का बालक, उतना दुनिया में और किसी पशु पक्षी का नहीं है। आप गाय के बछड़े को देखना, पैदा होते उठना शुरू हो जाता है, पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, और वो स्वयं ढूंढ लेता है, उसको दुग्धपान कराना नहीं पड़ता है, वो बछड़ा स्वयं ढूंढता है दूध कहाँ है, स्वयं ढूंढता है। आश्चर्य की बात है कि नहीं, वह स्वयं ढूंढता है। उसको मां नहीं पिलाती दूध, मां तो खड़ी हो जाती है, मां नहीं दिखाती कि बेटा आओ ये स्तन मेरा यहां यहां दूध है, नहीं, वो ढूंढता है, खड़ा भी होता है और वो ढूंढता और दूध पीता है। वो किसने सिखाया खड़ा होना, किसने सिखाया कि ये दूध है और इसको पीना है? अनंत जन्मों के संस्कार या अनादि ये प्रक्रिया, जब से जीव में पता नहीं कितने बार वो पैदा हुआ, कितने बार दूध पिया, कितने बार ये प्रक्रिया चलती रही। और ये मनुष्य का जो बालक दुनिया में सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है, सचमुच कमजोर, मनुष्य का बालक जो है ना सबसे कमजोर, केवल इसके पास एक चीज है वो दिमाग है, और उसने इसके पास दिमाग ना हो तो सबसे बड़ा कमजोर। एक कुत्ता भी आदमी को मार सकता है, इतना कमजोर आदमी, इसको चाहे तो बंदर भी मार सकता है, क्यों मार सकता है कि नहीं मार सकता है, इतना कमजोर आदमी है, इतना कमजोर आदमी किसको बिल्ली भी मार सकती है। ये बिल्ली का भी शिकार रहा है, ये कुत्ते का भी शिकार, शेर भालू की बात छोड़ो, इतना कमजोर आदमी, ये पानी में तैर नहीं सकता है आदमी, पानी नेचुरल नहीं है। आप तैरते ये बात अलग है, लेकिन पानी में तैरने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। आप पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते हैं, आप न पेड़ पर चढ़ सकते हैं, न आकाश में उड़ सकते हैं, न जल में तैर सकते हैं, इतने कमजोर। बंदर भालू तो कम से कम पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आदमी को जमीन पर ही रहना है, दौड़ भी नहीं लगाता आदमी, आदमी की दौड़ बहुत तेज नहीं है, कुत्ता आदमी पकड़ लेगा। यदि कुत्ता दौड़ने लगे तो आपसे ज्यादा दौड़ लेता है, बिल्ली आपसे ज्यादा दौड़ती है। यहां तक बाकी छोड़ो, आपसे गिलहरी भी ज्यादा दौड़ती है, आप गिलहरी को दौड़ के पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते, इतना कमजोर आदमी है इस पृथ्वी पर, सबसे कमजोर आदमी। लेकिन एक चीज है इसके पास और वो है दिमाग, बौद्धिक क्षमता। आदमी बहुत जुगाड़ू है, जुगाड़ू जुगाड़ करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन अपने पैरों में तो दम नहीं है, लेकिन यंत्रों को खड़ा कर देता। अनादि बोला यही संस्कार, गहरे संस्कार, भोग के संस्कार, आदमी के जीवन में कामना के विकारों के संस्कार, कब से कामी है आदमी, काम की कोई शिक्षा नहीं है। जितनी भी शिक्षाएं दी जा रही नारायण, ये तो अकाम होने की शिक्षाएं हैं, क्रोध से परे होने की शिक्षा। आप यहां सत्संग में श्रवण करते हैं, ये काम की शिक्षा है कि काम से परे होने की शिक्षा है? क्रोध की शिक्षा है कि क्रोध से परे होने की शिक्षा है? लेकिन आश्चर्य की बात, काम से, क्रोध से, इन विकारों से परे होने की सारी शिक्षाएं हम ले रहे हैं और उसके बाद भी हम नहीं हो पा रहे हैं, और जिसकी कोई शिक्षा नहीं है, कोई उसका डिप्लोमा नहीं, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट। क्रोध की हमको शिक्षा किसी ने दी है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट उसी में है। ये भोग के बारे में कभी आपको शिक्षण दिया गया क्या? कोई शिक्षा नहीं, और सबसे ज्यादा भोग में हम एक्सपर्ट हैं, उसका यही कारण है अनादि। बस बहुत सारे जन्म हमने लिए और बहुत सारे जन्मों में इन सारी चीजों का भोग किया है, और वो सारे संस्कार और स्मृतियां हमारे अंतर मन में पड़ी हुई हैं, समय आने के बाद धीरे 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 बाहर आ जाती हैं। इसलिए हमारे वेदांत ने कहा कि जीव और जीव के जो धर्म हैं वो अनादि हैं, अनादि, और इन अनादि संस्कारों से ये जीवात्मा संचरित होता रहता है, और इन अनादि संस्कारों को काटना है, अज्ञान से परे होना है, अज्ञान तो है, और उस अज्ञान को काटना है, वासना को काटना है। तो यहां उन्होंने कहा पुराणम, बोले पुराण, कितना पुराना है, ये बहुत पुराना, आत्मा भी पुराना है और आत्मा के साथ ये संस्कार और स्मृतियां भी पुरानी। और इस पुरानी आत्म तत्व को, वस्तु को जानना है तो यहां बालक नचिकेता के लिए कहा अध्यात्म योग। अध्यात्म योगाधिगमेन नित्यम देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अपने आप को जानने के उपाय को उन्होंने अध्यात्म योग कहा। अध्यात्म योग कहो अथवा आत्मयोग कहो, एक ही बात है। अध्यात्म योग माने आत्मयोग, अपने आप में स्थित होने का योग है। ये बाहर में स्थित होने का योग नहीं है। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो आप अपने में स्थित है कि क्रिया में स्थित है? आप बाहर स्थित हैं, वो बहिर्मुखता है। आप यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा, तो आप हाथों में हैं। आप घी डाल रहे तो घी में हैं। आप मंत्रों में हैं, आप देवता में हैं, तो आप अपने से बाहर हैं। आप कोई भी क्रिया करो बाहर की, वो सब बहिर्मुख बना देते हैं हमको। और ये अध्यात्म योग माने अपने में हो जाने का अर्थ है, अपने में हो जाना। ये अपने में होने का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। अक्सर जो है हम जीवन जीने के लिए बाहर के पदार्थों का आलंबन लेते हैं। आप कभी ऐसा देखना जैसे बैठे रहो आप और आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखना है। आपको देखने वाले में अपने आप में बैठना है, देखने वाले में आपको बैठना है। आप देखने वाले हैं और देखने वाले में ही आपको बैठना है, स्थिर होना है। आप देखते आंख बंद करो, कुछ करना नहीं है, कुछ करें तो गए काम से। आंख बंद करो ये भी करना है लेकिन आपको नहीं करने में ले जाना है। देखो आप हाथ को, पैर को, कान को, हर क्रियाओं को देखो और देखने के बाद सोचो कि मैं केवल देखने वाला हूं और ये सारी चीजें मेरे दृष्टि में आ रहे हैं, दृश्य हैं और उससे मैं अलग हूं। आप अपनी सांसों पर दृष्टि रखो, देखो कि श्वास से मैं परे हूं, मैं देखने वाला हूं श्वास को, मैं श्वास को देख रहा हूं और मैं श्वास से परे हूं। मैं अपने इंद्रियों को देख रहा हूं, मैं इंद्रियों से परे हूं और न देखना है, न सुनना है, न चखना है, न सूंघना है। आपको इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के कोई काम नहीं करना है, पांचों कर्मेंद्रियों के कोई काम नहीं करना है और उस समय आप देखना आप अपने में हैं। आप आंख में नहीं हैं, कान में नहीं हैं, नाक में नहीं हैं, रसनेन्द्रिय में नहीं, त्वचेन्द्रिय में नहीं हैं, आप केवल अपने में हैं। इसलिए भगवान ने आपको बोला सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः अहम्। जो अहम जो है ना, अहम वो केवल आप हैं अहम, और उस अहम के साथ आप कुछ क्रिया को मत जोड़ना। आपने जैसे ही उस अहम को क्रिया में डाला वो अनात्मा हो जाता, अपने से दूर हो जाता है। आप मैं हूं, केवल मैं, आप मैं के साथ जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं? मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देखना जुड़ गया। और जैसे ही मैं के साथ देखना जुड़ गया आप क्या बन गए? आप आंख बन गए। मैं सुन रहा हूं, मैं के साथ सुनना जुड़ गया तो आप क्या बन गए? खान बन गए। मैं खा रहा हूं, ये खाने की प्रक्रिया किसकी है? ये तो मुख की प्रक्रिया। और जैसे ही मैंने कहा कि मैं खा रहा हूं तो मैं खाने से जुड़ गया और खाने की क्रिया तो मुख की है, तो मैं क्या बन गया? मुख बन गया। मैं सूंघ रहा हूं, ये सूंघने की प्रक्रिया नाक की प्रक्रिया है, मैं नाक से जुड़ गया, नाक हो गया मैं। इसलिए हम दिन भर कुछ होते रहते हैं, हम दिन भर ना कुछ होते रहते हैं, कभी आंख होते हैं, कभी कान होते हैं, कभी मुख होते हैं, कभी नाक होते हैं, कभी पैर होते हैं, कभी हाथ हो जाते हैं, लेकिन अपने को कुछ होना नहीं है। केवल अहम, मैं। और ये सोचना है कि चलना पैरों का काम है, लेना देना हाथ का काम है, उससे मैं अलग हूं। देखना आंख का काम है, खाना मुख का काम है। मैं जो आपका जो मैं है ना, वो खाता है क्या? आपका मैं चलता है क्या? आप घुटने के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, पैरों के साथ जोड़ लेते हैं, तब आप बोलते हैं कि मैं चल रहा हूं, और आपके घुटने खराब हो गए और उसके बाद मैं तो है ना आपके पास, चलो। ये चलने का काम मैं का नहीं है, आत्मा का नहीं, आत्मा तो अक्रिय है। तो केवल मैं में स्थिर होने का नाम मैं, और वो मैं जो है ना आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व है। मैं ये नहीं हूं, मैं वो बस। उस परमात्मा के साथ अपने अहम को जोड़ना है, इस शरीर के साथ जोड़कर आत्मा का परिचय नहीं। परमात्मा ब्रह्म के साथ मिलाकर जो आत्मा का परिचय, इसी को कहता अध्यात्म योग। शरीर से परे ब्रह्म तत्व के साथ अपने अहम को जोड़कर जो अनुभूति है, वही अध्यात्म योग। और इस अध्यात्म योग की प्राप्ति होने के बाद हर्ष शोको जहाति। आचार्य यम ने कहा वो हर्ष माने ऐन्द्रिक सुख और दुख, इससे वो साधक परे हो जाता है। बड़ा सुंदर ये विषय है, सीधे बैठ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ
वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।